आयु रूम में बैठकर आरव के आने का वेट कर रही थी। आरव बाथरूम में था। उसके आने पर वो उसे छवि सिंघानिया और उनके बीच की नाराज़गी का कारण जानना चाहती थी। साथ ही इसी बहाने उसे माहिरा और आरव के बीच के रिश्ते के बारे में भी जानने का मौका मिल जाता। आरव काफ़ी देर तक बाहर नहीं आया तो आयु इरिटेट होकर डोर के पास गई और डोर नॉक करते हुए बोली, और कितना टाइम लगेगा तुम्हें आरव? इतना टाइम तो मैं भी नहीं लेती। मुझे टाइम लगता है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो खुद अंदर आ जाओ, आरव ने आईज रोल करके जवाब दिया। कुछ ही मिनटों में उसने दरवाज़ा खोल दिया। आयु को परेशान करने के लिए आरव जानबूझकर सिर्फ टॉवल लपेटकर बाहर आया था। उसके गीले बाल माथे पर बिखरे थे। आयु ने आरव की तरफ देखा तो कुछ पल के लिए वो भूल गई कि वो आरव से नाराज़ है और एकटक उसे देखती रही। आरव को देखते हुए आयु उसमें खोसा गई। आयु को अपनी तरफ घूरता पाकर आरव ने ईविल स्माइल दी और आयु के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, हॉट लग रहा हो ना? हाँ, अचानक आयु के मुंह से निकला। फिर जब उसे एहसास हुआ कि अभी अभी आरव ने क्या कहा तो आयु झट से बात बदलते हुए बोली, नहीं। आरव जानबूझकर आयु के बिल्कुल करीब आ गया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बस भी करो बहाने बनाना, तुम्हारा ही हस्बैंड हूँ, आराम से देख सकती हो। मैं तो कहता हूँ सिर्फ देखना ही क्या, जो चाहे वो कर सकती हो। वैसे भी तुम्हारा गुस्सा देखकर लगता है तुम बहुत वाइल्ड हो, आरव आयु को परेशान करने लगा। आयु ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं तुम गलत समझ रहे हो, जाकर कपड़े पहनो वरना ठंड लग जाएगी। आयु ने जैसे तैसे बात को संभाला और वहां से जाने लगी। आरव ने उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। आरव से दूर जाने के चक्कर में उसका टॉवल आरव के हाथ में आ गया। उसकी इस हरकत पर आरव चिढ़ते हुए बोला, आखिर चाहती क्या हो तुम? कितनी बार तो मुझे बिना कपड़ों के देख लिया, आई डोंट अंडरस्टैंड, फिर रह क्या गया आखिर? आयु का चेहरा दूसरी तरफ था और आरव फिर से टॉवल लपेट में लगा। अभी तो बहुत कुछ रह गया, तुम बच्चों की तरह बातें क्यों कर रहे हो, साइंस नहीं पढ़ी क्या? आयु आरव की जवाब दे रही थी। तभी आरव उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, बस करो डॉक्टर, मैंने कुछ नहीं पढ़ा होगा और तुमने कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया। अब तुम बाहर जाओ, मुझे चेंज करना है। चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले तो मुझे छवि सिंघानिया और माहिरा लूथरा से तुम्हारे रिश्ते के बारे में सब कुछ बताओगे, बोलते हुए आयु आरव की तरफ पलटी और आगे कहा, लिसन आरव, मुझे झूठ नहीं सुनना है, और मैं ना बताऊं तो? आरव ने चैलेंजिंग वॉइस में कहा। आयु ने कुछ पल सोचा और फिर रुककर जवाब में कहा, तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी और मैं इस बार सीरियस हूँ। आयु की बातों ने आरव को गुस्सा दिला दिया। वो सर्द लहजे में बोला, आई डेयर यू मिसेस खुराना, तुम ऐसा करने की हिम्मत तो करके देखो, तुम्हारा साथ देने वाले हर शख्स को बर्बाद करके रख दूंगा। मुझे धमकी मत दो तुम, आयु चिल्ला कर बोली, खुद कुछ बताते नहीं हो, अगर हम दोनों के बीच इस तरह चीजें हाइड ही रखनी हैं तो ये दावा मत करो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे ना तुम्हारी शक्ल देखकर ही गुस्सा आता है। लेकिन थोड़ी देर पहले तो तुम्हें मेरी शक्ल देखकर प्यार आ रहा था, आरव ने भौहें उठाकर कहा। आयु ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो आरव ने उसे शांत करने के लिए कहा, ठीक है बता दूंगा, आई नीड सम टाइम, अब तो खुश हो तुम? आयु ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिलाया। अचानक आयु को अपनी आंखों के सामने सब घूमता हुआ महसूस होने लगा। आयु धीमे कदमों से बेड के पास आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही वो चक्कर खा के गिरने लगी। आरव ने दौड़कर उसे संभाला और बेड पर बैठाते हुए कहा, जब हैंडल नहीं होता तो इतना स्ट्रेस लेने की क्या जरूरत है? आयु को पकड़ते ही आरव को एहसास हुआ उसे बहुत तेज बुखार है। तभी आरव को याद आया कि कुछ देर पहले अयान ने भी यही कहा था। आरव ने उसे डांटते हुए कहा, तुमने मेडिसिन नहीं ली ना, देखो क्या हालत कर ली है तुमने, वो भी इतनी सी देर में। मैं ठीक हूँ, बस मुझे रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगता है, कल रात जो हुआ उसके बाद ये सब हो रहा है, मैं कल रात उन गुंडों से बचने के लिए बहुत दौड़ी थी, आयु ने जवाब दिया। फिर उसे ख्याल आया कि उसने अब तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। आयु जल्दी से बोली, आरव वो चारों आदमी कहाँ है? मुझे उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करनी है, दे वर ट्राइंग टू रेप मी, इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकती मैं उन्हें। तुम्हें ये क्यों लगा मैं उन्हें सस्ते में छोड़ दूंगा? अभी उन्हें उनके किए की सजा मिलनी बाकी है और मेरे होते हुए तुम्हें उनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम बस रेस्ट करोगी, बोलते हुए आरव ने आयु को जबरदस्ती वहां लेटा दिया। आरव आयु के पास से उठते हुए बोला, तुम रेस्ट करो, मैं बस अभी आता हूँ, कहकर आरव क्लोजेट एरिया में गया और कपड़े पहने। आरव वापस आयु के पास आया, उतने में ही वो सो चुकी थी। आरव ने आयु के फॉरहेड पर किस किया और नीचे आ गया। आरव नीचे अयान से मिलने आया था। अयान अब तक वहीं पर मौजूद था और गौरवी जी के पास बैठकर बातें कर रहा था। आरव ने उनके पास आकर कहा, अयान मुझे तुमसे बात करनी है। दादी आप रेस्ट कीजिए, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको ऐसे केयरलेस रहने दूंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे और आयु के बीच क्या चल रहा है? पहले वो परेशान हालत में मुझे ऑफिस के बाहर मिली और अब तुम दोनों बहस कर रहे हो। देखो मेरी तबीयत पहले से ही खराब है, मुझे और स्ट्रेस मत दो, गौरवी जी ने ड्रामेटिक वे में कहा। उनके बोलने के तरीके पर अयान ने सार्कास्टिक वे में सिर हिलाया और कहा, दादी आप भी भाई के साथ रहते हुए पूरे ड्रामेबाज हो गए हो। मैं कोई ड्रामेबाज नहीं हूँ, और दादी हम दोनों के बीच कुछ भी हो जाए
पर हम अलग कभी नहीं होंगे, तो आप हमारी तरफ से बेफिक्र हो जाए। आयु थोड़ा लो फील कर रही थी इसलिए रेस्ट कर रही है। अयान तुम मेरे साथ आओ। आरफ ने एक सांस में गौरवी जी और अयान की बातों का जवाब दे दिया और फिर अयान को खींचकर अपने साथ ले गया। आरव अयान को लिविंग रूम में लेकर आया था और उसे कल रात आयु के साथ जो भी हुआ था उसके बारे में बता दिया और साथ ही उसकी खराब हेल्थ के बारे में भी। पूरी बात सुनने के बाद अयान ने नाराजगी जताते हुए कहा, इतना सब कुछ हो गया और आप मुझे अब बता रहे हैं? हमारे बीच कितने भी डिफरेंस हो भाई, लेकिन हमने प्रॉमिस किया था कि एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। मैं कुछ नहीं छुपा रहा अयान, बस तुम्हें बताने में टाइम लग गया। अब मुझे बताओ कि वो ठीक क्यों नहीं हो रही है? मैंने उसे सब मेडिसिन दे दी, यहाँ तक कि जो उसने बताई थी वो भी लाकर दे दी। कैसी डॉक्टर है वो, खुद का इलाज नहीं कर सकती, ऊपर से बीमार अलग से रहती है, आरव ने कहा। वो आयु की हेल्थ को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहा था। उसका परेशान होना भी जायज था क्योंकि आयु की हेल्थ ठीक होने के बजाय वैसी ही थी। अयान ने गहरी सांस देकर छोड़ी और कहा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि उसकी बॉडी अलग तरीके से वर्क करती है। डिटेल में आपको समझाऊंगा तो आप फिर से बोर हो जाएंगे। इन शॉर्ट इतना ही समझ लीजिए कि जब ट्विंस पैदा होते हैं तो या तो दोनों बच्चे हेल्दी होते हैं या उनमें से एक बच्चे अपनी माँ का ज्यादा न्यूट्रिशन लेकर ज्यादा हेल्दी हो जाता है और दूसरा वीक। ऐसा ही उन दोनों के केस में हुआ था। अनुष्का हेल्दी बेबी थी, आई मीन फिजिकल और मेंटली स्ट्रांग, जबकि आयु वीक। मेंटली उसने काफी ग्रो किया और आज एक डॉक्टर तक बन गई, पर फिजिकल उसकी बॉडी रिकवर होने में टाइम लगती है। अगर नॉर्मल जुकाम भी हो जाए तो उसे एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है, फिर यहाँ तो इतना कुछ हो गया। स्ट्रेस की वजह से उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, आपको उसे रिलैक्स फील करवाना होगा, अयान ने शॉर्ट में आरव को सब समझा दिया।
पूरी बात जानने के बाद आरव ने कहा, ठीक है फिर ऊपर जाकर उसका चेकअप करना और मेडिसिन चेंज करनी हो तो मुझे बता देना, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो हम उसे एडमिट कर देते हैं। आरव को आयु की फिक्र करता देख अयान को अच्छा लगा। उसने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, नहीं आप बस उसका माइंड रिलैक्स रखिए, बाकी मेडिकेशन का वो खुद देख लेगी। आरव को सब समझाने के बाद अयान वहां से जाने को हुआ, तभी आरव ने उसे रोकते हुए कहा, क्या तुम दो घंटे के लिए मिसेस खुराना के पास रुककर उसका माइंड रिलैक्स करने में हेल्प कर सकते हो? रियली आप मुझे ये कह रहे हो? जहां तक मुझे याद है कोई एक छोटे से हक से भी जलस हो रहा था, अयान ने हैरानी से पूछा। जितना कहा है उतना करो, आरव ने आइज रोल करके कहा और वहां से बाहर आ गया। अगले कुछ मिनट में आरव अपनी गाड़ी पर था। उसने कबीर को कॉल कर लिया और कहा, जल्दी से जल्दी वेयरहाउस पहुंचो। कबीर ने उसकी बात पर हामी भरी और कॉल कट कर दिया। लगभग डेढ़ घंटे बाद आरव और कबीर दोनों ही वेयरहाउस में मौजूद थे। वो खुराना इंडस्ट्रीज की पुरानी फैक्ट्री थी जहां पर रॉ मटेरियल रखा जाता था। अब कबीर के साथ आगे बढ़ा तो उसे फैक्ट्री में काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे। उनके बीच वो चारों लोग बंधे हुए पड़े थे जिन्हें कल रात आरव ने गोली मारी थी। उन चारों को देखकर आरव की निगाहें सर्द हो गईं। उसने वहां रखा एक नाइफ उठाया और इन चारों आदमियों की तरफ बढ़ा। आरव के वहां आते ही सब सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट हो गए थे, वहीं उन चारों ने भी घबराहट से आरव की तरफ देखा। तभी आरव ने तेज आवाज में कहा, वो कौन था जिसने मेरी मिसेस खुराना को थप्पड़ लगाया था? वैसे तो वो चारों दोस्त थे, लेकिन आरव का तेवर और हाथ में चाकू देखकर उन सबको डर लग रहा था। तीन आदमियों ने एक आदमी की तरफ पॉइंट करते हुए एक साथ एक सुर में कहा, यही है वो जिसने उस लड़की को थप्पड़ मारा था। आरव ने सिर टेढ़ा करके एक नज़र उस आदमी की तरफ देखा। वो उम्र में लगभग 40-42 साल का था। आरव ने उसे अजीब नज़रों से देखा और फिर नाइफ लेकर उसके गाल में घुसा दिया। पूरे वेयर हाउस में उस आदमी की चीख गूंज रही थी, तो बाकी तीन आदमी डर के मारे आरव की तरफ देख रहे थे। आरव उस आदमी के पास आकर सनक भरी आवाज में बोला, उसके गाल पर अभी भी निशान है और आंखों में तुम चारों का डर। आरव खुराना की वाइफ किसी से डर रही है, वो भी मेरे होते हुए। तुम चारों की हिम्मत कैसे हुई मेरी मिसेस खुराना की तरफ नज़र उठाकर देखने की? जैसे ही आरव ने अपनी बात खत्म की, उसने चाकू उस आदमी के गाल से निकालकर उसके हाथ में घुसा दिया। गोली लगने के बाद वो चारों पहले से ही जख्मी थे, लेकिन आरव जिस तरह से उस आदमी के साथ बर्ताव कर रहा था उससे डर के मारे उन्हें चारों के माथे पर पसीने की बूंदें थीं। ओके, आरव कोई माफिया नहीं है, लेकिन वो जिन्हें सबक सिखा रहा है वो भी कोई अच्छे इंसान नहीं है। स्पेशली उन्होंने आयु के साथ जो किया उसके बाद तो आरव उन्हें माफ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट पर।